परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय श्रोता मित्र, आपको उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल होंगे और आज भी इस बाइबल अध्ययन के लिए तैयार होंगे। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में अध्याय 12 से देखा था, जिसमें हमने अब्राहम के मिस्र देश में जाने और समस्या में पड़ने के विषय में देखा था। आज हम उत्पत्ति उसके 13 अध्याय से अपना अध्ययन आरम्भ करेंगे, जिसमें हम अब्राहम का लूत से अलग होना, लूत का सदोम जाना और परमेश्वर का अब्राहम को दर्शन देना और वायदों को पुनः मजबूत करना आदि देखेंगे। मित्रों, हम अध्याय 13 में अब्राहम का मिस्र देश से वापसी के विषय में देखते हैं। अब्राहम और लूत मिस्र देश को छोड़कर वायदा किए हुए देश कनान में वापस लौट आए। लूत अब्राहम से अलग होकर सदोम को चला जाता है और तब परमेश्वर अब्राहम को तीसरी बार दर्शन देते हैं। मित्रों, आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि जब तक अब्राहम मिस्र में था और जब तक वह लूत से अलग नहीं हो गया, परमेश्वर ने उसे दर्शन नहीं दिया। जैसे ही वह मिस्र देश से लौटकर वायदे की भूमि में आया और लूत से अलग हुआ, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 13 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, तब अब्राहम अपनी पत्नी और सारी धन संपत्ति लेकर मिस्र से निकलकर नेगेव को गया और लूत भी उसके साथ गया। अब्राहम अपने पशुओं, सोने और चांदी के कारण बड़ा धनी था। उन दिनों में अब्राहम जनाढ्य व्यक्ति जिसके पास बहुत संपत्ति थी। और इसी रीति से हम उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं, तब वह नेगेव से यात्रा करता हुआ बेतेल के इस स्थान पर पहुंचा, जहां आरंभ में उसका तंबू था और जो बेतेल और ए के मध्य है। अब्राहम यरूशलेम से बहुत दूर उत्तरी दिशा में गया। वह हेब्रोन के निकट दक्षिण में आया और अब वह यरूशलेम की ओर दिशा बेतेल को जाता है। आगे उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 4 पद में भी लिखा है, अर्थात वही स्थान जहां उसने पहले वेदी बनाई थी, वहां अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। मित्रों, हम देखते हैं कि यद्यपि अब्राहम ठोकर खाकर गिरा, फिर भी वह परमेश्वर के पास वापस आता है। अब्राम के पास हमेशा वेदी के पास आने के लिए एक मार्ग है। उड़ाव पुत्र और कोई भी स्त्री या पुरुष जो परमेश्वर के पास वापस आना चाहते हैं, परमेश्वर पिता अपनी बाहें फैलाए हुए आपको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके पाप क्षमा किए जाएं? क्या आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं? तो देर मत कीजिए और आज ही अब्राम की तरह अपना सामान बांधकर प्रभु के पास आ जाइए और उससे क्षमा प्राप्त कीजिए। मित्रों, हम उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, अब लूत के पास भी जो अब्राम के साथ साथ आया था भेड़ बकरियां, गाय बैल और तंबू थे। यहां पर ऐसा लगता है कि लूत ने मिस्र में भी अच्छी संपत्ति बनाई। आइए देखें कि आगे क्या होता है। उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 6 से 7 पद में लिखा है, वह भूमि उनके एक साथ रहने के लिए पर्याप्त न थी क्योंकि उनके पास इतनी अधिक संपत्ति थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राम के पशुओं के चरवाहों तथा लूत के पशुओं के चरवाहों के बीच झगड़ा हुआ। उस समय उस देश में कनानी और परिजी जातियां रहती थी। मित्रों, यदि आप परमेश्वर के वचन को बात करने दें तो यह आश्चर्यजनक है। क्या आप मेरे साथ यहां ध्यान देंगे? अब्राम ने मिस्र में 2 चीजें प्राप्त की जिसने उसे असहनीय दुख दिया। पहली, संपत्ति का होना, और दूसरा कि उसने एक मिस्री दासी को साथ ले लिया जिसका नाम हाजिरा था। हाजिरा के बारे में हम आगे और अधिक देखेंगे, लेकिन अब हम उसकी संपत्ति को देखते हैं जो लूत और उसे अलग होने के लिए मजबूर कर रही थी, क्योंकि संपत्ति के कारण दोनों के नौकरों के बीच में झगड़े हो रहे थे। मित्रों, क्या आपने इस कथन पर ध्यान दिया? उस समय उस देश में कनानी और परिजी जातियां रहती थी। अब्राम के चरवाहे और लूत के चरवाहे झगड़ रहे थे और तब अब्राम और लूत असहमत होते हैं। यहां पर एक रुचिदायक बात यह है कि उस समय हो सकता है कि कनानी लोग परिजी से कह रहे होंगे कि देखो वे फिर झगड़ रहे हैं। जब वे यहां पहली बार आए और सच्चे परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, उस समय हम लोग अब्राम को कैसे देखते थे? जब वह पहली बार आया तो हमने सोचा कि वह एक अद्भुत व्यक्ति है। हम जानते हैं कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। हम जानते हैं कि वह एक सत्यवादी था। परंतु अब उसे देखिए, उनके झगड़ों को देखो जो उनके बीच में हो रहे हैं। मैं नहीं समझता कि कनानी और परिजी उनके इस प्रकार के व्यवहार से प्रभावित हुए होंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि यह बात आपको अच्छी ना लगे। मैं आपके शहर या गांव के बारे में नहीं जानता। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आप कहां रहते हैं। लेकिन यदि आपका शहर या गांव भी दूसरों के जैसा है, जैसे मैं एक गांव से आता हूं जहां पर अलग अलग कलीसियाओं के आपस में नहीं बनती है, उनके मत में भिन्नताएं हैं और आपस में झगड़े हैं। जब कलीसिया के अंदर में ही इस प्रकार के मन मुटाव और झगड़े हैं तो बाहर का एक अविश्वासी व्यक्ति भी इसे जानेगा। क्या मैं आपसे बताऊं कि वह क्या कहेगा? यदि यही मसीहत है तो मैं इसका सदस्य या भागीदार नहीं बनना चाहता हूं। मैं लड़ाई बाहर ही कर सकता हूं। मुझे लड़ने के लिए कलीसिया में जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अपनों से कहा और आज कलीसिया से कहा कि यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 35 पद में हम इसे पढ़ते हैं। उसने ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम कट्टरवादी और कलीसिया का नेतृत्व करो तो मेरे चेले ठहरोगे। उसने कहा, एक दूसरे से प्रेम रखो। मेरे प्रिय मित्र, जब आपकी कलीसिया में झगड़े होते हैं तो परिजी और कनानी जो पुराने बदमाश या शैतान है, इस बात को जानते हैं कि कलीसिया अंदर से लड़ रही है। मित्रों, मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि उसके एक चाचा थे जो कभी प्रभु के विश्वास में नहीं आए। उसकी चाची रोते हुए कहा करती थी, हाय, ये सुनते ही नहीं है। क्या आप जानते हैं क्यों? चाची के साथ और एक बहन रहती थी और मेरे मित्र कभी कभी रात्रि भोजन के लिए जाया करते थे। क्या आप जानते हैं कि हमें रात्रि भोजन में क्या मिला? प्रचारकों और सेवकों के विषय में टीका टिप्पणी कहने का मतलब है कि एक चाची एक कलीसिया में, दूसरी चाची दूसरी कलीसिया में रविवारीय आराधना के लिए जाती थी, लेकिन रात्रि के समय वे दोनों इस प्रकार से प्रचारक और वहां की लड़ाइयों की चर्चा करती थी कि वे एक दूसरे पर हावी होना चाहती थी, और मेरे दोस्त के चाचा जी ये सब ध्यानपूर्वक देखते थे। वह वहां बैठते, खाते और चले जाते, और कभी कभी मनोरंजनालय में चले जाते थे। जब वो शाम को घर आते तो नशे में तो नहीं होते, लेकिन शराब पीकर जरूर आते थे। चाची ने चाचा जी को प्रभु के लिए कभी भी नहीं जीता। मित्रों, आज भी कई लोग हैं जो प्रभु के लिए नहीं जीते गए। मित्रों, इसका कारण कलीसिया में झगड़ा होना है। यह एक रुचिदायक बात है कि उस समय कनानी और परिज्जी उस देश में रहते थे और वे आज भी वहां रहते हैं। वे आपके कलीसिया के दरवाजे के पास रहते हैं। क्या आप उन्हें जीत रहे हैं? उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 8 और 9 पद में लिखा है, तब अब्राम ने लूत से कहा, न तेरे और मेरे मध्य, न तेरे और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़ा हो, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। क्या तेरे सामने सारी भूमि नहीं पड़ी है? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, यदि तू दाईं ओर जाए तो मैं बाईं ओर चला जाऊंगा। यह अब्राम ही था जिसने बंटवारा किया। ऐसा करने के लिए बड़े व्यक्ति को लूत से कहना पड़ा, और दूसरे शब्दों में कहें तो अब्राम कह रहे हैं कि लूत जैसा चाहता है चुनाव कर सकता है, और जो कुछ बच जाएगा अब्राम उसे लेगा। अब आगे हम देखते हैं कि लूत सदोम को जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसके 10 पद में हम पढ़ते हैं, तब लूत ने आंखें उठाकर यर्दन नदी की घाटी को देखा कि वह यहोवा के बगीचे की तरह, हाँ सोअर के मार्ग तक मिश्र देश की भूमि की तरह भली भांति सिंचित है। उस समय तक यहोवा ने सदोम और अमोरा का नाश नहीं किया था। मित्रों, उन दिनों में यह क्षेत्र एक सुंदर स्थान था। और फिर हम उत्पत्ति 13 उसके 11 और 12 पद में पढ़ते हैं, इसलिए लूत ने अपने लिए यर्दन की समस्त घाटी का भाग चुन लिया और लूत पूर्व की ओर चल दिया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम तो कनान देश में बस गया, पर लूत उस घाटी के नगरों में रहने लगा तथा अपने तंबू सदोम तक खड़े किए। यह वास्तव में रुचिपूर्ण है। संभवतः लूत ने पूरे समय तक अब्राम के साथ उसी भूमि पर जीवन यापन किया। रात्रि के समय लूत अपने तंबू के पर्दे को हटाकर बाहर की ओर देखता होगा और अपनी पत्नी से कहता होगा, प्रिय देखो कितनी सुंदर जगह है। सुबह उठकर कहता, देखो उस तराई में वह कितना सुहावना लग रहा है। दूसरों की चारागाह की घास हमेशा ही हरी भरी लगती है। जब वह दिन आया कि लूत चुनाव करे और वहां से जाए, आप जानते हैं कि वह किस दिशा में गया? मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अचानक से पाप में नहीं गिरता, या हमेशा ही कुछ समय के बाद वह उस पर हावी होता है। आप अपने तंबू के पल्ले को हटाकर देखें। यदि आपने अपना तंबू सदोम के सामने खड़ा किया है और यह आपकी शुरुआत है। लूत ने अपनी दृष्टि उठाकर देखी और उसने मैदानी क्षेत्र को देखा और वह क्षेत्र में बढ़ गया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी जो उसने की। लूत इसे नहीं जानता था, और इसलिए हम फिर आगे उत्पत्ति 13 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं, सदोम के लोग यहोवा की दृष्टि में अत्यंत दुष्ट और पापी थे। हम बाद में देखेंगे कि लूत और उसकी पत्नी व परिवार का क्या हुआ जो सदोम में रहते थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जहां परमेश्वर अब्राम को दर्शन देते और प्रतिज्ञा को पुनः स्पष्ट करते हैं, अर्थात पुष्ट करते हैं। उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 14 पद में, लूत के अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल। लूत से अलग हो जाने के पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, यहां पर परमेश्वर तीसरी बार उसे दर्शन देते हैं, अब अपनी आंख उठा और जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चारों ओर दृष्टि डाल। यही वह भूमि है जिसे परमेश्वर तुझे देने पर है। परमेश्वर ने अब्राम को दर्शन देना जारी रखा और बाद में अन्य पुरखों को भी दर्शन दिया। परमेश्वर ने उस भूमि के चारों ओर सीमा रेखा तय कर दी। दूसरे शब्दों में कहें तो उसने उनके लिए सीमा निर्धारित कर दी और उसने बताया कि वह जमीन कहाँ तक है। वह उसके प्रति बहुत ही स्पष्ट था। क्या मैं इस विचार के बीच में कुछ बोलूं? इसे उस गीत से बाहर निकल जाना चाहिए। सुंदर उपद्वीप जहां है, यदि कोई गीत है जिसे दफनाए जाने के समय नहीं गाना चाहिए, तो यह वही गीत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अब्राहम उत्तर की ओर, पूर्व और दक्षिण और पश्चिम की ओर देख रहा था और यह गीत गा रहा था। वह सुंदर उपद्वीप कहाँ है जबकि वह उसके मध्य में खड़ा था। मित्रों, स्वर्ग एक स्थान है जो सच में है, और उसी प्रकार प्रतिज्ञा किया हुआ देश भी वास्तविक है। एक सुंदर उपद्वीप जो कहीं और नहीं परंतु एक वास्तविक स्थान है, जिसके बारे में परमेश्वर का वचन भी निश्चित है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं। वह इसके चारों ओर बाड़ा खड़ा करते हैं और इसके बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। परमेश्वर उसे प्रकट नहीं करते जो सिर्फ सैद्धांतिक हो, परंतु उसके साथ जो वास्तविक और सच में है उसे प्रकट करते हैं। हम उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए दूंगा। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के समान बढ़ाऊंगा, इसलिए यदि कोई पृथ्वी की धूलिकण गिन सकेगा तभी तेरे वंशजों की गिनती भी हो सकेगी। मित्रों, कृपया यहां पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर इस व्यक्ति के लिए क्या कह रहे हैं। वह पृथ्वी के उस भाग को चिन्हित करते और अब्राहम से कहते हैं कि वह उसमें है। वह इस बात को भी पुनः पुष्ट करते हैं कि अब्राहम के वंशज अद्भुत होंगे जो उसके वंशज होंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, उठ उस भूमि की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि यह मैं तुझे देता हूं। यह एक रुचिदायक बात है कि मृत सागर स्क्रोल या लेख में एक उत्पत्ति की पुस्तक के इस विशेष भाग का वर्णन करता है, और यह वर्णन उस भूमि पर रहने वाली पहली व्यक्ति अब्राहम के द्वारा दिया गया है। यह भूमि उन दिनों में एक अद्भुत भूमि थी। हम उत्पत्ति उसके 13 अध्याय के 18 पद में आगे पढ़ते हैं, तब अब्राहम अपने तंबू हटाकर मम्रे के बांजवृक्ष के बीच जो हेब्रोन में है जाकर रहने लगा, और वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। मित्रों, अब्राहम सचमुच में एक वेदी बनाने वाला था। आप आसानी से हमेशा यह बात कह सकते हैं या देख सकते हैं कि अब्राहम कहां पर था, क्योंकि वह वहां पर एक गवाही छोड़कर जाता था। मनुष्यों ने चांद पर अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, उन्होंने वहां पर झंडा गाड़ दिया है और एक छोटा सा आदर्श वाक्य लिखा है जो कहता है हम शांति में आए हैं, परंतु उन्होंने बाइबल को नहीं छोड़ा जो परमेश्वर का वचन है। यही बात अब्राहम के विचार और हमारे युग के लोगों के विचारों के बीच में भिन्नता को प्रकट करती है। अब्राहम के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात परमेश्वर के लिए वेदी बनाना थी, और इसी कार्य को उसने किया। मित्रों, मामरे का एक अर्थ यह भी है समृद्धि, और हेब्रोन का अर्थ है सहभागिता। वह रहने के लिए एक अद्भुत स्थान था। हमारे दिनों में हम पूर्ण रीति से निश्चित कर सकते हैं कि अब्राहम कहां पर था, क्योंकि बांज ब्रिज को पाना ही सब स्पष्ट कर देता है, और उसका कुआं भी वहीं है। मेरे कुछ मित्र वहां जा चुके हैं, और वास्तव में यह रुचिदायक स्थान है जो मामरे और हेब्रोन के मध्य में है, और यह वही स्थान है जहां अब्राहम ने निवास किया। यह रहने के लिए अच्छा स्थान था जहां समृद्धि और परमेश्वर के साथ सहभागिता होती थी। यह ऐसे लगता है कि अब्राहम का घर रहा होगा, और यही वह स्थान है जहां उसे दफनाया भी गया। मित्रों, यहां पर 13 अध्याय समाप्त होता है, और अब हम 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम पूर्वी राजाओं के द्वारा सदोम और अमोरा को अधीनता में लेना और अब्राहम का लूत को उनसे छुड़ाना, लूट का माल लेने से अब्राहम का इनकार करना आदि विषयों पर ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम हम अध्याय 14 में पहले युद्ध को पाते हैं जिसमें अब्राहम लूत को छुड़ाते हैं, और यहाँ पर हम पहले याजक के प्रगटीकरण को भी पाते हैं जिस समय अब्राहम मलकीसिदेक के द्वारा आशीषित किया गया। यही दो महान सत्य इस स्थान पर हैं। एक अर्थ से देखें तो यह अध्याय बहुत ध्यान देने योग्य है। यह कहानी के साथ मेल नहीं खाता, और ऐसा लगता है कि इसे छोड़ भी दिया जाता फिर भी इसके बिना कहानी आगे बढ़ती। परंतु उत्पत्ति की पुस्तक में यह एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो आइए हम उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 1 और 2 पद को पढ़ें। लिखा है, शिनार के राजा अम्रापेल, एल्लासर के राजा अरियोक, एलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोयिम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा, अमोरा के राजा विर्षा, अदमा के राजा सिनाव और सवोयम के राजा सेमेबेर तथा बेला अर्थात सोअर के राजा इन सब के साथ युद्ध किया। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि यह एक ऐतिहासिक लेख संग्रह है। इसके पहले 11 पदों में यह दिखाया गया है कि पूर्व के राजाओं ने सदोम और अमोरा को पराजित किया। कुछ वर्ष तक विरोधी तार्किक विद्वानों ने इसे मानने से इनकार किया था, क्योंकि उनका कहना था कि इन लोगों के नाम संसार के इतिहास की पुस्तकों में नहीं है, इसलिए यह एक व्यर्थपूर्ण कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन राजाओं के नाम स्मारकों पर और तख्ती पर लिखे मिले हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि वे अस्तित्व में थे। वास्तव में अम्रापेल ही है जिसे बाहरी इतिहासकार हम्मीरावी के रूप में मानते हैं। जो लेखों का संग्रह हमारे पास है वो बड़ा ही अद्भुत और सार्थक है। उस समय युद्ध हुआ और यही पहला युद्ध है जिसके विषय में लिखा है, मानव जाति ने प्रारंभिक दिनों से ही युद्ध करना शुरू कर दिया था। यद्यपि यह पहला युद्ध है जिसे लेख के रूप में लिखा या और सुरक्षित किया गया है, परंतु मैं नहीं जानता कि यह पहला युद्ध था या नहीं। मैं नहीं समझता कि लेखक इस प्रारंभ का प्रभाव डालने के लिए लिख रहा है। इस युद्ध को लेख के रूप में लिखने का मुख्य कारण यह था कि इस युद्ध में अब्राम का भतीजा लूत भी शामिल था। मित्रों, हम उत्पत्ति की पुस्तक 14 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, इन सब ने सिद्दीम की तराई में अर्थात लवण सागर के पास एका किया। 12 वर्ष तक ये कदोरला ओमेर के अधीन रहे, परंतु 13वें वर्ष उन्होंने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह ही था जो पूर्व के राजाओं को सदोम और अमोरा के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए लाया। घटना के तौर पर ये राजा पहले ही लड़ चुके थे, क्योंकि पूर्व के राजाओं ने ही मैदानी क्षेत्र व शहरों को अपने अधीन कर लिया था, परंतु इन शहरों के लोग विद्रोह के स्थान पर पहुंच गए। हम पद 5 से 11 में पढ़ते हैं कि कैसे पूर्व के राजाओं ने उन पर विजय प्राप्त की जो उनके विरुद्ध मृत सागर के निचले हिस्से में एक हो गए थे। उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, और वे अब्राम के भतीजे लूत को उसकी सारी धन संपत्ति सहित ले गए, क्योंकि वह सदोम में ही रह रहा था। लूत सदोम में रहता था, इसलिए उसे भी बंधुआई में ले गए। इस युद्ध को लिखने का विशेष कारण यह है कि यह इस बात को प्रकट करता है कि अब्राम अपने भतीजे के सिलसिले में आगे क्या करने जा रहा है। मित्रों, आगे हम पाते हैं कि अब्राम उसे छुड़ाते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 13 पद में देखेंगे। तब एक भागे हुए व्यक्ति ने इब्री अब्राम को जाकर समाचार दिया। उस समय वह एमोरी मामरे के बांज ब्रिज के समीप रहता था। वह एशकोल और आनेर का भाई था। इन लोगों की अब्राम के साथ संधि थी। जब पूर्व के राजा ने अपने बंधुओं के साथ सदोम और अमोरा के क्षेत्र को छोड़ दिया, तो वे उत्तर की ओर मृत सागर के किनारे किनारे चले, जो मामरे और हिब्रोन से अधिक दूरी पर नहीं था, जहां अब्राहम रहता था। आप उस स्थान में खड़े होकर देख सकते हैं जहां अब्राहम खड़ा हुआ था कि नीचे मृत सागर में के आसपास क्या हलचल मच रही है। इसलिए जब अब्राहम यह संदेश पाया, वह तुरंत अपने शत्रुओं का पीछा करते हुए उत्तर को गया, और जो लोग उसके साथ थे उनकी उसके साथ संधि थी। यहां पर ध्यान दीजिए कि अब्राहम के पास कुछ लोग थे जो उसके साथ थे। उन्हें उस दिन एक साथ खड़ा होना था, क्योंकि शत्रुओं को खोजना और पकड़ना था। उन्हें या तो अकेले रहना था या एक साथ रहना था। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 14 अध्याय के 14 पद में हम पढ़ते हैं, जब अब्राम ने सुना कि मेरा भतीजा पकड़ लिया गया है, तो उसने अपने घर में उत्पन्न हुए 318 युद्ध कौशल पुरुषों को लेकर दान तक उनका पीछा किया। यह एक सनसनीखेज बात है, और यह अब्राम के आगे की स्थिति को प्रकट करती है। यह आपको बताती है कि अब्राम के कितने नौकर थे। उसके अपने घर में जन्मे लोग 318 थे। उसके पास और कितने थे हमें नहीं मालूम। उदाहरण के रूप में उसके पास कितनी महिलाएं और उनके बच्चे थे और कई बूढ़े लोग भी होंगे, लेकिन उसने सिर्फ 318 को ही हमें बताया है। इतने लोगों को पैसा या मजदूरी देकर काम पर रखना, यह दर्शाता है कि अब्राहम का अच्छा खासा व्यापार था जिसमें वो पशु भेड़ बकरियों का धंधा करता था। उसने दान तक उनका पीछा किया और दान उत्तरी क्षेत्र में है। हम उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 15 पद में पढ़ते हैं, अब्राहम और उसके सेवकों ने रात को उनके विरुद्ध दलों में बंटकर उन्हें हरा दिया और दमिश्क के उत्तर में होबा तक उन्हें खदेड़ दिया। अब्राहम ने दमिश्क के उत्तर तक उन लोगों का पीछा किया जो एक लंबा रास्ता था। अब्राहम ने क्या किया कि उसने स्पष्ट रूप से अपने दासों को अलग अलग कर दिया। एक दल ने दुश्मनों पर आक्रमण किया और संभवतः ये लोग पीछे से उनका पीछा कर रहे थे और दूसरा दल उनके चारों ओर चलता रहा। जब पहले दल ने दुश्मनों पर आक्रमण किया और वे युद्ध के लिए मुड़े, तब सभी दल पहले दल के साथ मिल गए। इसके परिणामस्वरूप अब्राहम विजयी हुआ। कम से कम वह इतना कर सका कि उन्हें खदेड़ कर तितर बितर कर दिया ताकि वे मरुभूमि में भागें और जो कुछ उन्होंने लूटा था वे सब और बंधुआ बनाए गए लोगों को छोड़कर वे भाग गए। और हम उत्पत्ति 14 के 16 पद में पढ़ते हैं, फिर वह सारी संपत्ति लौटा लाया और अपने भतीजे लूत को उसकी धन संपत्ति सहित तथा स्त्रियों और शेष सब लोगों को भी छुड़ा लाया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे लोग स्त्री और बच्चों को भी दास बनाकर ले जा रहे थे। अब्राहम ने यहाँ पर एक महान काम किया है और यह सब कुछ उसने अपने भतीजे लूत के लिए किया। यही कारण है कि यहाँ पर इन सब घटनाओं का वर्णन यह निश्चित रीति से कहा जा सकता है कि यह अध्याय असंगत नहीं है। यह अब्राहम के जीवन का एक हिस्सा या एक भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, हम अपने इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सब इस अध्ययन से नई बातों को सीख रहे हैं और अपने आत्मिक जीवन में बल पा रहे हैं। हम अगले कार्यक्रम में इस अध्ययन को जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।